नमस्कार, आज हम गायत्री तीर्थ शांति कुंज से जुड़े कुछ स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं
जी।
हमारे पास एक तो कुछ दस्तावेज है और एक कविता भी है।
हाँ, शांति कुंज गुरुकुल है, पावन।
बिल्कुल, तो सवाल यह है कि इन स्रोतों के हिसाब से शांति कुंज की अपनी खास पहचान, वो वातावरण कैसे बनता है और इसका असर क्या बताया गया है लोगों पर, समाज पर?
निश्चित रूप से। और ये स्रोत शांति कुंज को सिर्फ एक मतलब एक जगह की तरह नहीं देखते।
अच्छा।
हाँ, वो इसे एक जीवंत साधना स्थली, एक विचारधारा मानते हैं।
शुरुआत इसकी पहचान से करें तो?
हाँ, करते हैं। इसे एक गुरुकुल कहा गया है, युग ऋषि का तप धाम, और जगह भी खास है, हिमालय की छाया, गंगा की गोद में। कहते हैं सप्तऋषियों की तपस्थली है ये।
हाँ, और गुरु सत्ता की पहचान वो तो पारंपरिक सिद्ध पुरुषों से बहुत अलग बताई गई है। जैसे वो वंदनीय माता जी के शब्दों का जिक्र है।
हाँ हाँ, कि परिचय ऐसे दो
जिसके पेट से आग और आंखों से शोले निकलते हों। ये काफी तीव्र छवि है, सिर्फ ज्ञान या सिद्धि वाली नहीं।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो मानवीय पीड़ा को लेकर कितने संवेदनशील थे
और समाज को बदलने की एक तीव्र इच्छा।
हाँ, मतलब सिर्फ एक शांत संत वाली छवि नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
एक क्रांतिकारी ऊर्जा कह सकते हैं। और इसी ऊर्जावान जीवन से सीखना, यही शांति कुंज का एक मुख्य उद्देश्य बताया गया है।
स्रोत में व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, समाज निर्माण की बात है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज
जी,
और आत्मीयता, स्नेह, श्रद्धा, इनको उपासना कहा गया है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गायत्री मंत्र दीक्षा को भी सिर्फ एक रस्म नहीं माना गया।
तो वो क्या है फिर?
वो एक संकल्प है, गुरु सत्ता के जीवन का, उनके विचारों का अनुसरण करने का।
अच्छा, मतलब उनके विचारों और इच्छाओं को जीवन में उतारना।
सही। और लक्ष्य क्या है? आत्मीयता का विस्तार, और जिसे वो कहते हैं युग निर्माण।
हाँ, समाज में बदलाव लाना, स्रोत में महाकाल का काम जैसा कुछ शब्द भी है।
जी, वही, समाज में सकारात्मक बदलाव। अब उस दिव्य वातावरण पर आते हैं, इसका जिक्र दोनों स्रोतों में है।
हाँ बिल्कुल, हरिद्वार में होना, सप्त ऋषियों की जगह, विश्वामित्र की तपस्थली, ये तो अपने आप में खास है ही।
और स्रोत बताते हैं कि इस वातावरण को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। एक तो वो अखंड दीप है।
हाँ, जो कभी बुझता नहीं।
बिल्कुल, और साथ में करोड़ों गायत्री मंत्रों का जाप जो लगातार चलता रहता है, और रोज होने वाले यज्ञ।
करोड़ों मंत्र और रोज यज्ञ?
जी हाँ, इन सब यज्ञ आहुतियों से, मंत्र जप से सिद्ध हुई एक प्राण ऊर्जा का प्रभाव वहाँ बना रहता है, ऐसा कहा गया है।
तो इसका असर क्या होता है, मतलब वहाँ जाने वालों पर?
स्रोत कहते हैं कि ये वातावरण व्यक्ति के तन, मन और अंतःकरण तीनों को झंकृत करता है, अभिमंत्रित करता है।
और एक दावा भी है ना, कि ऐसा दिव्य साधना स्थल और वातावरण पूरी पृथ्वी पर केवल शांति कुंज में ही है।
हाँ, ये दावा स्रोत करते हैं, ये काफी बड़ा दावा है वैसे।
हाँ, इसके पीछे वो क्या कारण बताते हैं, मतलब क्यों अद्वितीय है?
वो सीधे सीधे तुलना तो नहीं करते, पर इशारा यही है कि शायद इतनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जाएं, वो अखंड दीप, करोड़ों मंत्र जप, नियमित यज्ञ, इतने लंबे समय से एक ही जगह पर केंद्रित होना।
हाँ,
यही इसे अद्वितीय बनाता है, उस स्थान की एक आध्यात्मिक सघनता कह सकते हैं।
समझ गए। अच्छा, अब वहाँ की जीवन साधना और दर्शन की बात करें, एक पूरी दिनचर्या बताई गई है।
हाँ, ऋषि प्रणीत सामूहिक दिनचर्या, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, कृतज्ञता से जागरण, फिर प्रार्थना, आरती, प्राणायाम, ध्यान,
स्वाध्याय, सत्संग, साथ में भोजन, श्रमदान, यज्ञ, जप,
और रात में आत्मसमीक्षा भी।
हाँ,
अगले दिन की योजना, ये पूरी तरह जीवन को साधना में ढालने जैसा है।
सही बात है। और इसके पीछे का दर्शन क्या है?
दर्शन है समय का सही उपयोग। किसके लिए? लोक संग्रह और लोक मंगल के लिए।
मतलब अपनी उन्नति भी और समाज का भला भी।
बिल्कुल, और सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे मानना और अभ्यास से संस्कार बनाना, इस पर जोर है।
हाँ, कुछ साधनाओं के नाम भी हैं, चार सूत्री साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा,
तीन आधार, उपासना, साधना, आराधना, और चारित्रिक गुण भी, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी।
संयम पर भी काफी जोर है, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम,
और तीन त्याग भी बताए हैं, लोभ, मोह, अहंकार।
जी, ये सब साधना का हिस्सा है।
और सामाजिक पहलू भी है इसमें। कविता में जैसे जिक्र है कि वहाँ नर नारी, ऊंच नीच, जाति धर्म का कोई भेद नहीं।
हाँ, सब एक समान, कंधे से कंधा मिलाकर वो महाकाल का काम यानी युग निर्माण में लगे हैं।
तो एक तरह से आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक तीनों तरह की क्रांति का केंद्र बताया गया है इसे,
ज्ञान और विज्ञान का मिलन स्थल।
बिल्कुल, कविता तो ये भी कहती है कि भविष्य में जब दुनिया अशांत होगी तो यहाँ से शांति और मार्गदर्शन मिलेगा।
तो अगर हम सार देखें तो ये स्रोत शांति कुंज को एक ऐसे अनोखे केंद्र की तरह दिखाते हैं जहाँ गुरु सत्ता का जीवन दर्शन है।
हाँ, एक तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा वाला वातावरण है
और बहुत अनुशासित साधना पद्धतियां हैं,
और इन सब के जरिए व्यक्ति और समाज दोनों के उत्थान का काम होता है। समानता, सेवा, आत्मीयता, ये इसके आधार हैं।
सही है, और ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पर छोड़ जाता है ना?
हाँ बिल्कुल,
कि ये जो आत्मनिर्माण और लोक मंगल यानी समाज सेवा का समन्वय है, इसे अपने जीवन में संतुलन के साथ कैसे लाया जा सकता है।
क्या ये वाकई संभव है कि हमारी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा और समाज के प्रति हमारा योगदान एक दूसरे को ताकत दे, जैसा यहाँ दिखाया गया है?
हाँ, ये सोचने लायक बात है।